आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
नमस्कार, मैं हूँ स्वाति शर्मा और प्रस्तुत हैं 12 जुलाई 2025 के लिए संक्षिप्त समाचार। वेस्ट ऑस्ट्रेलिया के सुदूर इलाके में लगभग 2 हफ्ते गुम रहने के बाद एक जर्मन बैकपैकर को ढूंढ लिया गया है और अब वे अस्पताल में स्थिर हालत में हैं। 26 वर्षीय जर्मन कैरोलिना विल्गा का थकावट, निर्जलीकरण और मामूली चोटों का इलाज चल रहा है, क्योंकि वह 11 रातों तक प्राकृतिक तत्वों के संपर्क में रही और आवश्यकता से कम भोजन एवं बारिश और गड्ढों के पानी के सहारे जिंदा रही। पुलिस को आशंका है कि विल्का उस समय गुमराह हो गई जब उनकी वैन एक सुदूर अंतर्देशीय झाड़ीदार रास्ते में फंस गई। इससे पहले उन्हें आखिरी बार बीकन के एक जनरल स्टोर में देखा गया था। डिटेक्टिव एक्टिंग इंस्पेक्टर जेसिका सिकूरो का कहना है कि यह पूरी तरह सौभाग्य की बात है कि वह अपनी वैन से 24 किलोमीटर दूर एक गुजरते हुए वाहन चालक को मदद के लिए रोकने के बाद मिल गई। चीन की एक सप्ताह की यात्रा शुरू कर रहे प्रधानमंत्री को अपने प्रमुख व्यापारिक साझेदार के साथ ऑस्ट्रेलिया के जटिल संबंधों को संभालने की एक नाजुक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। एंथनी अल्बनीजी की चीन की दूसरी यात्रा उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग और व्यक्तिगत संबंधों को मजबूत करने पर केंद्रित होगी। वह प्रीमियर ली शियांग के साथ नेताओं की वार्षिक बैठक में भाग लेंगे और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अपनी चौथी औपचारिक बैठक करेंगे। अल्बनीसी आज शनिवार सिडनी से शंघाई के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया हमेशा कई मुद्दों पर चीन से असहमत रहेगा, लेकिन दोनों देशों के बीच संबंध महत्वपूर्ण हैं। वेस्ट ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक मालिक कह रहे हैं कि वे मुरुजुगा के यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल होने के बावजूद यहां की शैल कला यानी रॉक आर्ट के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। कराथा के पास उत्तर पश्चिम वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में बुरुप पेनिनसुला में 2 गैस संयंत्र यानी प्लांट्स, 1 उर्वरक संयंत्र और लौह अयस्क एवं नमक निर्यात संयंत्र हैं, जिनके बारे में मुरुजुगा परंपरा की संरक्षक रेलीन कूपर का कहना है कि ये शैल कला को अभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके बावजूद मुरुजुगा एबोरिजिनल कॉरपोरेशन का कहना है कि वे इस स्थल को विश्व धरोहर का दर्जा मिलने से बेहद खुश हैं। उत्तर पश्चिमी न्यू साउथ वेल्स में एक शिकार यात्रा के दौरान कथित तौर पर गोली लगने से एक बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। न्यू साउथ वेल्स पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि 9 वर्षीय यह बच्चा बोर्क से लगभग 40 किलोमीटर उत्तर में एक संपत्ति पर 9 अन्य लोगों के साथ था जब उसकी दाहिनी जांघ में गोली लग गई। घटना की जांच के तहत राइफलों और एक बंदूक सहित 17 अग्नेयास्त्र जब्त किए गए हैं। एक शांत उपनगरीय सड़क पर एक कार द्वारा पैदल यात्रियों को टक्कर मारने के बाद बुजुर्ग ड्राइवरों के लिए नियमों में बदलाव पर विचार किया जा रहा है। इस दुर्घटना में एक महिला की मौत हो गई और एक पुरुष और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गए। एक टोयोटा यारिस कार मेलबर्न के वेंटिना साउथ में पैदल यात्रियों को टक्कर मारने से पहले एक फुटपाथ पर चढ़ गई थी। गुरुवार को तीनों एक उपनगरीय सड़क पर चल रहे थे, तभी एक वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी, फिर एक बाढ़ से टकराकर एक बेंच से जा टकराई। एक 59 वर्षीय महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 60 वर्षीय एक व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है और 2 साल के एक बच्चे की हालत अब स्थिर है। पुलिस ने अभी तक बुजुर्ग ड्राइवर से पूछताछ नहीं की है, जिसके बारे में उनका कहना है कि वह इस घटना से सदमे में थे और उन्हें केवल मामूली खरोंचें आई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कनाडा की वस्तुओं पर 1 अगस्त से प्रभावी होने वाले 35% तक के भारी वृद्धि वाले टैरिफ की घोषणा के बाद कनाडा यूरोप के साथ घनिष्ठ व्यापार और रक्षा संबंधों की ओर बढ़ रहा है। यह कदम राष्ट्रपति ट्रंप की महीनों से दी जा रही धमकियों के बाद उठाया गया है, जिनका दावा है कि ये कार्यवाही फेंटनल तस्करी और कनाडा से होने वाले अमेरिकी तेल आयात के कारण व्यापार घाटे के जवाब में है। कनाडा सरकार ने इस बढ़ोतरी की निंदा की है और अन्यत्र विशेष रूप से यूरोपियन यूनियन के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए काम कर रही है। एयर इंडिया दुर्घटना की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में पाया गया है कि टक्कर के कुछ क्षण पहले दोनों इंजनों के ईंधन नियंत्रण स्विच रन स्थिति से कट ऑफ स्थिति में आ गए थे। भारत ने विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो द्वारा जारी 15 पृष्ठों की रिपोर्ट में 12 जून को हुई दुर्घटना के बारे में कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया है, लेकिन संकेत दिया गया है कि एक पायलट ने दूसरे पायलट से विमान की ऊंचाई कम होने से कुछ क्षण पहले पूछा था कि उसने ईंधन क्यों बंद कर दिया। दूसरे पायलट ने जवाब दिया कि उसने ऐसा नहीं किया था। हवाई यातायात नियंत्रकों ने पायलटों से पूछा कि क्या हुआ, लेकिन फिर उन्होंने विमान को दुर्घटनाग्रस्त होते देखा और आपातकालीन कर्मियों को घटनास्थल पर बुलाया। बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर पश्चिमी भारत के अहमदाबाद से लंदन जा रहा था जब यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे विमान में सवार 242 लोगों में से एक को छोड़कर सभी की मौत हो गई। साथ ही जमीन पर भी कम से कम 19 लोग भी मारे गए। आज के समाचारों में बस इतना ही। हमारी किसी भी रिपोर्ट, न्यूज या इंटरव्यू को दोबारा से या जब चाहे सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट sbs.com.au/hindi या फिर SBS हिंदी के फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज पर भी जा सकते हैं। धन्यवाद।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।